ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने समावेशी और समतामूलक समाज का निर्माण कर राष्ट्रीय एकता बहाल करने को बताया अपना मूल लक्ष्य। स्वास्थ्यकर्मियों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक की व्यवस्था करने का सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया निर्देश। मुगलिन पोखरा सड़क खंड अंतर्गत कोतरे खंड पर आज से 5 दिन तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद। और गजा पर इसराइल के हालिया हवाई हमलों में 38 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि समावेशी और समतामूलक समाज का निर्माण कर राष्ट्रीय एकता बहाल करना उनका मूल लक्ष्य है। आज लोकतांत्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल द्वारा काठमांडू में आयोजित राष्ट्रीय महिला सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछड़े समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए मौलिक हक के क्रियान्वयन पर बल देने की जरूरत है। मौके पर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि संविधान संशोधन के द्वारा समानुपातिक और समावेशी प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित किया जाएगा। आज ही 9वें बौद्ध सम्मेलन के काठमांडू फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल और चीन के संबंध में बौद्ध धर्म एक कड़ी के रूप में है। स्वास्थ्यकर्मियों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक की व्यवस्था करने का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को निर्देश किया है। मंत्रालय की गुणवत्ता मापन तथा नियमन महाशाखा ने सभी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों समेत सामुदायिक और निजी अस्पतालों को पत्राचार करते हुए स्वास्थ्यकर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश किया है। मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में पारिश्रमिक लगायत सुविधाओं में अन्याय होने की शिकायतें आने के बाद ऐसा निर्देश किया गया है। साथ ही सभी को बैंक के माध्यम से पारिश्रमिक देने का निर्देश भी पत्र में किया गया है। मुगलिन पोखरा सड़क अंतर्गत शुक्ला गंडकी नगरपालिका वार्ड नंबर 2 कोतरे खंड पर आज से 5 दिनों तक सड़क अवरुद्ध रहेगी। जामुनी बाजार से कास्की के सेती पुल तक सड़क स्तरोन्नति शुरू होने के कारण आज से पूस 2 गति तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ये जानकारी तन्हो जिला प्रहरी ने दी। कार्यालय ने यातायात व्यवसायियों और यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग प्रयोग करने का अनुरोध भी किया है। कैलाली का टीकापुर विमानस्थल 35 सालों के बाद परसों से नियमित संचालन में आने वाला है। विक्रम संवत 2046 में द्वंद्व के कारण बंद हुआ टीकापुर विमानस्थल मार्ग शीर्ष 30 गति से संचालित होने वाला है। विमानस्थल से उड़ान के लिए टीकापुर नगरपालिका और तारा एयर के बीच न्यूनतम 15 सीटों की सुनिश्चितता सहित सहमति होने के बाद विमानस्थल संचालन में आने वाला है। ये बात टीकापुर नगरपालिका प्रमुख रामलाल डगौरा ने बताई। बता दें कि मार्ग शीर्ष 30 गति रविवार को पहली उड़ान होने के बाद हर हफ्ते रविवार और बृहस्पतिवार को एक एक उड़ान करने की सहमति हुई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विभिन्न 5 देशों के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत नियुक्त किए हैं। नेपाल के संविधान के तहत राष्ट्रपति पौडेल ने मंत्री परिषद की सिफारिश पर प्रकाशमणि पौडेल को पोर्चुगल, सनील नेपाल को स्पेन, प्राध्यापक डॉ कपिल मान श्रेष्ठ को दक्षिण अफ्रीका, सेवा लम्साल को बेल्जियम और डॉ शिव माया तुम्बाहाम्पे को दक्षिण कोरिया के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत पद पर नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि संसद की गरिमा को ऊंचा बनाने के लिए सबके सहयोग की जरूरत है। 18वें संघीय संसद सेवा दिवस के अवसर पर आज संसद सचिवालय सिंह दरबार में आयोजित कार्यक्रम में सभामुख देवराज घिमिरे ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा परिकल्पित संसदीय आयन बनाने के काम को तीव्रता देने के लिए सबका साथ और सहयोग जुटाने के लिए पहलकदमी बहुत जरूरी है। पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि सामूहिक प्रयास से जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पीने के पानी को लेकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हुमला की सिमकुट पेयजल परियोजना वार्ड नंबर 5, 6 और 7 के अनुगमन और निरीक्षण के दौरान मंत्री यादव ने ये बात कही। नेपाल पत्रकार महासंघ के नए नेतृत्व चयन के लिए आज चुनाव हुआ। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ था। ये जानकारी केंद्रीय मतदान समिति ने दी। समिति ने बताया कि आज ही से मतगणना भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि आज पत्रकार महासंघ की केंद्रीय समिति 10 प्रदेश समितियों व 77 जिला शाखाओं और 41 प्रतिष्ठान शाखाओं में नया नेतृत्व चयन के लिए मतदान हुआ। चलचित्र विकास बोर्ड नुमा फोंग सहित 10 नेपाली फिल्मों को डिजिटाइज करने की तैयारी में है। बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश डीसी ने बताया कि बसंती, बलिदान, दक्षिणा, बसाई, वीर गणेशमान लगायत फिल्मों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वर्तमान तकनीक में रूपांतरित कर आर्काइव किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा से मिली रिपोर्ट के अनुसार इसराइली हमलों में 38 लोगों की मौत हो गई। गजा शहर में एक आवासीय इमारत पर इसराइली हवाई हमले में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 10 लोग मारे गए। इसके तुरंत बाद अल नुसेरात शरणार्थी शिविर में विस्थापित लोगों के लिए एक घर पर और एक इसराइली हवाई हमले में 15 अन्य लोग मारे गए और रफा शहर के पश्चिम में सहायता ट्रकों की रखवाली करते समय 13 लोगों की जान चली गई, जिसे इसराइली मिसाइलों ने निशाना बनाया था। दूसरी ओर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक इसराइली बस पर फिलिस्तीनी गोलीबारी में एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। कम से कम 3 अन्य घायल हो गए। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पिछले 66 दिनों से गजा को मानवीय सहायता काफी हद तक अवरुद्ध है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 75,000 फिलिस्तीनी भोजन, पानी, बिजली या किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवा से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सर्दियों के आने के साथ ही गजा में लगभग 5,45,000 लोग क्षतिग्रस्त इमारतों और अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं, जिससे ये सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल मिलता है कि हजारों तिरपाल और मरम्मत सामग्री को बिना देरी के पट्टी में सुरक्षित रूप से लाया जा सके। फ्रांस में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मध्यमार्गी नेता फ्रांसवा बायरू को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। 73 वर्षीय फ्रांसवा बायरू मेयर हैं और मॉडर्न पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने नाम के ऐलान से पहले उन्होंने इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की थी। ये मुलाकात लगभग 2 घंटे चली। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री रहे मिशेल बार्निये को उनके पद से हटाया गया था। वो केवल 3 महीने तक ही अपने पद पर बने रहे थे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गर्मियों के दौरान संसदीय चुनाव कराने का ऐलान किया है। इसके बाद से फ्रांस में राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। गुरुवार को फ्रांस में किए गए एक जनमत सर्वे में भी ये बात निकल कर आई है कि 61% फ्रांसीसी मतदाता देश की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंतित हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने समावेशी और समतामूलक समाज का निर्माण कर राष्ट्रीय एकता बहाल करने को बताया अपना मूल लक्ष्य। स्वास्थ्यकर्मियों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक की व्यवस्था करने का सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया निर्देश। मुगलिन पोखरा सड़क अंतर्गत कोतरे खंड पर आज से 5 दिन तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद। और गजा पर इसराइल के हालिया हवाई हमलों में 38 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।